जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय छह प्रयाण संख्या 144 अपदान करण अधिकरण कारक तीन भगवान सविशेष तीन चिन्ह अपदान करण अधिकरण कारक तीन भगवान सविशेष तीन चिन्ह अपदान करण अधिकरण कारक तीन भगवान सविशेष तीन चिन्ह पदार्थ बोली अपादान अपादान करण करण अधिकरण अधिकरण कारक कारक तीन तीन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सविशेष व्यक्तित्व में ये तीन तीन चिन्ह लक्षण अनुवाद मेरे पीछे बोलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साकार स्वरूप की तीन श्रेणियां हैं अपादान करण तथा अधिकरण। तो तात्पर्य बढ़ने से पहले समझेंगे कथा प्रसंग क्या चल रहा है। आप लोगों से कितने लोग जानते हैं कथा प्रसंग क्या चल रहा है? हाथ उठी। आप बताओ क्या चल रहा है? सार्वम भट्टाचार्य के साथ वार्तालाप हो रही है चैतन्य महाप्रभु की। तो चूंकि सोमवार को सप्ताह में केवल एक दिन ये क्लास होती है तो जो कथा प्रसंग है वो फिर दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए हमें याद करना जरूरी है कि कथा प्रसंग क्या चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करके वे मूर्छित हो गए, प्रेम में मूर्छित हो गए। उस समय सार्वम भट्टाचार्य ने जब देखा तो अपने घर में उठवा करके ले गए। तो कई आदमी उठा करके सार्वम भट्टाचार्य के घर में ले जाते हैं और फिर कई घंटों के बाद चैतन्य महाप्रभु अपनी बाहरी चेतना में आते हैं। तो उस समय गोपीनाथ आचार्य और सार्वम भट्टाचार्य के बीच में कुछ बातचीत होती है। तो गोपीनाथ आचार्य का कहना है वो जीजा हैं और सार्वम भट्टाचार्य साले हैं। तो गोपीनाथ आचार्य का कहना है कि ये स्वयं भगवान है, साक्षात कृष्ण है, और सार्वम भट्टाचार्य नहीं मानते है ना। तो फिर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि अपने अपने बात में दोनों अड़े रहे। तो सार्वम भट्टाचार्य ने नहीं स्वीकार किया और जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को बताई गई तो चैतन्य महाप्रभु भी इतने विनम्र हैं कि उन्होंने सार्वम भट्टाचार्य का अनुमोदन किया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो तो मेरा भला चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं, वो जो कह रहे हैं वही सही है। भगवान ऐसे असली भगवान ऐसे हैं है ना। जो नकली भगवान अपना प्रचार करना चाहते भाई प्रचार करो कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, सब लोग आओ मेरे दर्शन करो है ना। और जो असली भगवान है वो जो है इस बात में संतुष्ट है। तो कोई अगर भगवान को अज्ञानी मान ले और कमजोर मान ले, निर्बल मान ले है ना, और उनकी रक्षा करना चाहता है, उनको ज्ञान देना चाहता है, तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं इस बात से है ना। और सार्वम भट्टाचार्य ने मतलब ये भी कहा कि आप 24 वर्ष की अवस्था में आपने संन्यास लिया है तो तो इतनी कम उम्र में संन्यास लिया है तो बड़ी मतलब बहुत खतरा है ना। इसलिए मैं वेदांत सूत्र का आपको जो है उपदेश देना चाहता हूँ, आप उपदेश लीजिए मुझसे। तो भगवान जो है इसके लिए तैयार है, कोई शिष्य भी बनाए अगर भगवान को उपदेश देना चाहे है ना, तो भगवान उसकी मतलब हित कामना देख करके कि हित तुम आप चाहते हैं, भगवान का हित करना चाहते हैं, तो ये जो है मतलब सद्भावना को भगवान इतना पसंद करते हैं कि आप उनको जो है अपना शिष्य भी बना लो तो शिष्य बनने के लिए भी तैयार है। तो वेदांत सूत्र का जो है उन्होंने उपदेश दिया सार्वभौम भट्टाचार्य ने, और सात दिन तक व्याख्या करते रहे, और भगवान जो है विनम्र शिष्य की तरह बैठे सुन रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा, सात दिन तक मैंने आपको उपदेश किया और आप सुन रहे हैं, तो कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ नहीं आया? अगर कृष्ण प्रश्न नहीं पूछते हैं तो या तो सब कुछ समझते हो या कुछ नहीं समझते। अगर आप प्रश्न नहीं पूछते हैं या तो आप सब कुछ समझते हो या कुछ नहीं समझते हो, तो आप सब कुछ समझते हो या कुछ नहीं समझते हो? तो भगवान बोले कि जो मूल सूत्र हैं, वेदांत सूत्र जो है जो मूल रूप में है, वो तो मुझे समझ आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आपकी जो व्याख्या वो समझ नहीं आ रही, व्याख्या तो जो है बिल्कुल उल्टी है, उसके अर्थ को ढक रही है। ये तो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है, मूल सूत्र समझ में आ रहा है और व्याख्या जो है उसके अर्थ को ढक रही है, क्योंकि वो तो शांकर भाष्य से उपदेश दे रहे थे, मायावादी सिद्धांत, मायावादी सिद्धांत के अनुसार व्याख्या कर रहे थे वेदांत सूत्र की। तो फिर जब उन्होंने कहा कि अगर आप मूल सूत्रों को समझते हैं तो आप व्याख्या करिए, तो भगवान चैतन्य व्याख्या कर, अब भगवान चैतन्य व्याख्या कर रहे हैं और भगवान चैतन्य सिद्धांत समझा रहे हैं कि वेदांत सूत्र जो है इस सिद्धांत पर आधारित है कि भगवान क्या है, सविशेष है ना। इसलिए शब्द क्या है, भगवान एर सविशेष है, भगवान जो है सविशेष है, निर्विशेष नहीं है। तो निर्विशेषवाद ये शंकराचार्य का है, मायावाद निर्विशेषवाद, ये भगवान निर्विशेष है ना। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के भगवान एर सविशेष है, यही तीन चिन्ह है, भगवान के सविशेष होने में तीन चिन्ह है, तीन प्रमाण कि भगवान सविशेष है या भगवान साकार है, व्यक्ति है। निर्विशेष का मतलब है मतलब कोई व्यक्ति नहीं है भगवान, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, इम्पर्सनल। तो जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान को कोई व्यक्ति नहीं मानते, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, आप कोई व्यक्ति हैं है ना, और मेरे कुछ पसंद है, आपको कुछ पसंद है, और हो सकता है आपके पसंद मेरी पसंद ना हो, क्योंकि मैं अलग व्यक्ति हूँ आप अलग व्यक्ति हैं, तो भगवान भी एक व्यक्ति हैं। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान को व्यक्ति मानते हैं, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि भगवान व्यक्ति, तो सविशेष भगवान एक विशेष व्यक्ति हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं, तो उनको कुछ पसंद है और कुछ पसंद नहीं है, तो आपको जानना पड़ेगा कि उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। सविशेष उनका रूप भी है, कोई विशेष रूप है ना, यानी जो रूप मान लो सो है, नहीं तो कोई रूप नहीं, ये नहीं है सविशेष। तो भगवान सविशेष हैं, इनके जो है तीन चिन्ह मतलब जिससे कि निश्चित होता है कि वो उनका रूप है और उनका जो है व्यक्तित्व है, उनकी अपनी अलग पहचान है, एक व्यक्ति है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि तीन चिन्ह है, क्या है, पहला है अपादान, दूसरा करण और तीसरा अधिकरण, तीन कारक विशेषता है। तो भगवान सभी से ऐसे एक व्यक्ति हैं, तीन ये जो है विशेषताएं हैं भगवान की। तो पहला है क्या, अपादान है ना। तो अपादान का मतलब है कि उनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, अगर भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ है तो भगवान का कोई रूप होगा, है कि नहीं, क्योंकि हर जितने रूप हैं भौतिक सृष्टि में सब रूप हैं जिससे निकले हैं, तो वो कैसे निराकार हो सकता है, है कि नहीं, अपादान। और दूसरा क्या है, करण। करण का मतलब है कि वो पालन करने वाले। अगर वो पालन कर रहे हैं पूरे जगत का तो उनका रूप होना चाहिए कि वो पालन करते हैं, है कि नहीं। जैसे माता पिता बच्चे का पालन करते हैं तो बच्चे का रूप है वो माता पिता का रूप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे का रूप है और माता पिता का रूप नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, है? तो भगवान पालन करते हैं। और तीसरा क्या है, अधिकरण। अधिकरण करके संपूर्ण सृष्टि को जो है वो समेट लेते हैं अपने अंदर, उनके अंदर पूरी सृष्टि समा जाती है। तो ये भी अगर भगवान के अंदर पूरी सृष्टि समा जाती है तो भगवान का रूप होना चाहिए कि नहीं। भगवान के उदर में संपूर्ण सृष्टि समा जाती है, भगवान अपने उदर में उदरस्थ कर लेते हैं पूरी सृष्टि को, है ना। तो भगवान का रूप होना चाहिए, भगवान का व्यक्तित्व होना चाहिए। तो तीन जो है मतलब बातें हैं जिनसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान का एक रूप है, उनकी विशेषता है, उनका एक व्यक्तित्व है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की, शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में कहते हैं कि उपदेशों के आदेश अनुसार सारा ब्रह्मांड ब्रह्म अर्थात परम सत्य से उत्पन्न है ना। तो ये उपनिषदों का आदेश है कि ब्रह्म से उत्पन्न है। वेदांत सूत्र का भी सबसे पहला जो सूत्र है वो क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और उसके बाद क्या है दूसरा, जन्माद्यस्यता, जन्माद्यस्यता। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का है कि अब उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। किस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी, जन्माद्यस्यता, जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्यता, जन्म आदि अस्यता, जन्म आदि, जन्म आदि का मतलब जन्म और पालन और प्रलय। जन्म आदि अस्य, अस्य माने इस जगत का, यतः माने जिसके द्वारा होता है। तो तीनों चीजें जो है मतलब सृष्टि पालन और संघार, जन्म आदि का मतलब तीनों, जन्म आदि अस्य यतः, यतः माने जिसके द्वारा होता है। तो ये जगत जो है जिनसे उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा पालन होता है जगत का, और जिनके द्वारा जगत का संहार होता है, तो जिनसे ये तीनों कार्य होते हैं उस ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर ने उपनिषदों के आदेश अनुसार ब्रह्मांड ब्रह्म अर्थात परम सत्य से उत्पन्न है, ब्रैकेट में लिखा है, परम सत्य वे हैं जैसे सब कुछ उद्भूत हुआ है, उत्पन्न हुआ। तो पहली बात जो उत्पन्न करने की बात है तो इसको जो है पुष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद आगे। इस सृष्टि का पालन परम ब्रह्म की शक्ति द्वारा होता है और प्रलय के बाद ये परम ब्रह्म में समा जाता है, तीनों बातें। तो पहला ही मतलब शुरू में ही वेदांत सूत्र के ये बात बताई गई है कि उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो जिस ब्रह्म के द्वारा तीनों कार्य होते हैं ना। आगे इससे हम समझ सकते हैं कि परम सत्य की तीन श्रेणियां हैं, अपादान करण तथा अधिकरण। तीन श्रेणियां को जो है उपयुक्त शब्द नहीं मालूम पड़ता है। परम सत्य के मतलब तीन लक्षण चिन्ह समझो, तीन चिन्ह परम सत्य के, तीन चिन्ह जो कि मतलब सविशेष होने के लिए ये जो है संकेत है कि वो सविशेष है। आगे इन तीन कारकों के अनुसार परम सत्य निश्चित रूप से साकार है, निश्चित रूप से साकार है ना। लेकिन वे लोग जो है जब निर्विशेष कहते हैं कि परम सत्य निर्विशेष है, है ना, तो वो मतलब किस आधार पर बोलते हैं, वो भी तो अपना कुछ तर्क देते हैं, उनका तर्क क्या है, क्योंकि ये तो तर्क है, अब इसका क्या उत्तर है, उनके पास क्या उत्तर है, तो वो उत्तर देते हैं, तो मैं बताऊंगा उनका उत्तर। अब उसका जो है खंडन करना है आपको, ये आपका होमवर्क है, उसका खंडन करना है। वो क्या उत्तर देते हैं, उनका उत्तर है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, कहना है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब कैसे जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है कैसे, और ब्रह्म भी एक ही है, मतलब वो भगवान या आप जो एक ही वस्तु है, एक ही तत्व है, एक ही व्यक्ति है, वो ब्रह्म है ना। तो उनका ये कहना है कि पूरा का पूरा जो जगत है वो मिथ्या है। कैसे मिथ्या है, आप सोते हैं, सपना देखते हैं, तो सपने में आप अपने को भी देखते हैं, अपने भाई को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, और बहुत मतलब बड़ी दुनिया आप देखते हैं है? और अपना घर भी देखते हैं, दिल्ली का शहर देखते हैं, कभी मद्रास कलकत्ता देखते हैं, समुद्र देखते हैं, और पर्वत देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, बहुत बड़ी दुनिया देखते हैं है? जब जागते हैं तो क्या होता है, आप ही एकमात्र है और कुछ नहीं है, समझ रहे, आप ही एकमात्र सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या। तो जब जागने पर ये सब क्या हो गया, मिथ्या। तो इसी प्रकार से एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है जो कि अपने अंदर कल्पना कर रहा है जगत की, लेकिन जगत सत्य नहीं है। अच्छा है, सही है। तो उनका जो ये कहना है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ही ब्रह्म सत्य है। क्या उत्तर है, कौन कौन देगा उत्तर? हाँ जी, इनका कहना है कि सत्य है, मिथ्या नहीं है, लेकिन टेम्परेरी है। लेकिन उनके इस तर्क का खंडन कैसे करें, वो कहते हैं कि भाई एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है, मतलब भगवान और जीव अलग अलग नहीं है, ये सब जीव एक ही, हम सब एक ही हैं, एक ही ब्रह्म है, मैं हूँ, आप हैं ना, और विष्णु, सब एक ही ब्रह्म है। आप बोले इनका ये मतलब वैष्णव का तर्क होता है कि अगर ब्रह्म सत्य है ना, जब यहाँ वेदांत सूत्र बताया कि उत्पन्न हुआ है, तो ये कल्पना करने वाली बात नहीं बताई गई है वेदांत सूत्र में। जन्माद्यस्यता, जन्म आदि अस्यता, जन्म और पालन और संगा इस जगत का जिसके द्वारा होता है, अगर वो सत्य है तो जगत कैसे मिथ्या हो सकता है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये जो वाक्य है ये उपनिषदों का नहीं है, ये शंकराचार्य ने दे दिया वाक्य है ना, शंकराचार्य ने ये वाक्य दिया। वो कहते हैं एक श्लोक है शंकराचार्य का, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। शंकराचार्य कहते हैं कि आधे श्लोक में बता दूंगा जो करोड़ों ग्रंथों में लिखा हुआ है, करोड़ों ग्रंथों में जो बताया गई बात है आधे श्लोक में बताऊंगा शंकराचार्य। तो आधा श्लोक तो इसी में हो गया, ये भी आधे श्लोक में बताऊंगा। अब आधा श्लोक अब जो अगला क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म है और कुछ नहीं। तो आधा श्लोक में बता दिया ब्रह्म सत्य जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, उसको आधे श्लोक में बताऊंगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एक तर्क जो है इन्होंने दिया, अगर जो है जगत की रचना ब्रह्म से हुई है ना, तो जगत कैसे मिथ्या हो सकता है, जगत कैसे मिथ्या हो सकता है। अब हम जिनको जगन्नाथ बोलते हैं है? जगन्नाथ बोलते हैं, जगन्नाथ है? तो जगत के नाथ हैं और जगत मिथ्या है, तो ये उनका अपराध हुआ कि नहीं हुआ, जिस जगत के भी नाथ हैं अगर उस जगत को आप मिथ्या कह रहे हो तो जगन्नाथ को भी मिथ्या फिर कहना पड़ेगा कि नहीं है? जगतपति कहते हैं उनको, जगत बंधु कहते हैं, और क्या कहते हैं, जगदीश कहते हैं है जी, नहीं तीन बंधु तो खैर वो अलग बात है, लेकिन जगत है? तो जगतपाल मतलब जगत रक्षा, जगत की रक्षा करने वाले, तो जगत कैसे मिथ्या हो सकता है ना। तो हमारा कहना क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, सत्य है। हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि अनित्य है, अनित्य कह सकते हैं, टेम्परेरी है, परिवर्तनशील है, लेकिन तो भी मिथ्या नहीं कह सकते। उनका कहना है कि स्वप्न के समान मिथ्या है, स्वप्न के समान मिथ्या। जीव गोस्वामी इसका और भी खंडन करते हैं कि स्वप्न में भी अगर आप देखते हैं तो वो भी सत्य पर आधारित ही होता है। आप सुन रहे, स्वप्न में भी अगर आप कुछ देखते हैं तो जागृत अवस्था में जो चीजें हैं, है ना, उन्हीं पर आधारित है। आप समझे, तो स्वप्न भी जो है सत्य पर ही आधारित होता है। आप समझ रहे, सपने में आप कुछ भी देखते हैं कि भाई आप हैं और ये आपके घर के परिवार के लोग हैं, तो वो है भी ना, उस पर आधारित सपना है ना, तो वो स्वप्न भी जो है सत्य पर आधारित है। तो इस तरह से आप मिथ्या नहीं कह सकते स्वप्न को भी। हाँ, मिथ्या है स्वप्न, लेकिन फिर भी आधार तो सत्य है उसका, है कि नहीं। और फिर एक ही ब्रह्म है, मान लो जगत अपने देख रहा है। अब मैं अगर अपना सपना देखता हूँ तो मैं अपना सपना देखता हूँ, आप सपना देख अपना सपना देखते हैं, तो हमारा सपना और अपना आपका सपना एक जैसे तो नहीं होगा ना। आप समझ रहे, अगर मान लो सपना ही देख रहा है, एक ही ब्रह्म है जो सपना देख रहा है, तो फिर वो मिलान कैसे होता है मेरा और आपका, कि आप भी जो देख रहे हैं वो मैं भी देख रहा हूँ, कैसे हो कि नहीं। अगर सपना भी देख रहे हैं तो जितने अलग अलग जीव हैं और अपना अलग अलग सपना देख रहे हैं, तो फिर मिलान कैसे होगा, कि मैं भी जो देख रहा हूँ वो भी आप देख रहे हैं, तो कैसे मिलन होगा, मिलन नहीं हो सकता। तो ये बहुत मतलब असत सिद्धांत, गलत सिद्धांत। तो वैष्णव लोग जो है जी भर के इस सिद्धांत का खंडन करते हैं। आप समझ रहे, और ये भगवान के प्रति भी अपराध है। भगवान स्वामी हैं और हम सेवक हैं उनके, है ना, और सेवक जो है कहे कि मैं ही मतलब मालिक हूँ, तो कितना बुरा लगेगा मालिक को, लगेगा बुरा है? कोई कंपनी का जो है बॉस है, और जितने भी नौकर हैं वो कहे हम सब बॉस हैं तो बॉस को कैसा लगेगा है? तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, लेकिन तो भगवान की माया फिर काम करेगी, तो अपराध मायावादी कृष्ण अपराधी। तो इस तरह से जो है मध्वाचार्य तो इतना मतलब खंडन करते हैं, बड़ा तीव्र खंडन करते हैं मध्वाचार्य। और चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से ये शिक्षा ली कि मायावाद का जो है मतलब तीव्र खंडन करना, मतलब बहुत उग्र खंडन करना। माया मध्वाचार्य क्या कहते हैं कि भाई मायावादी मित्र, मुझमें तुम्हें कोई अंतर नहीं है, तो तुम्हारी जेब में जितना पैसा है वो मुझे दे दो मुझमें तुम्हें कोई अगर अंतर नहीं है तो तुम्हारी जेब में जितना पैसा है सब मुझे दे दो कोई अंतर नहीं है, है? है? और एक और भी, अगर मान लीजिए जो तुम कह रहे हो कि भाई जगत मिथ्या है, है? तो आप ही मिथ्या हैं और आप जो कह रहे हैं वो ही मिथ्या है कि नहीं अगर जगत मिथ्या है, उस जगत में आप भी हैं, हाँ, तो आप ही मिथ्या हैं, तो आप जो कह रहे हैं फिर वो सत्य कैसे हो सकता है कि नहीं, हाँ? तो अनेक प्रकार से खंडन करते हैं, तो आप लोगों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप लोग भक्तों के संग में हैं, तो मायावादियों से पाला पड़ा नहीं है आप लोगों का, है ना। लेकिन उनका बहुत प्रचार होता है, बड़ा प्रचलित है ना, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश में, पश्चिमी देश में भी बहुत फैला हुआ है ना। तो जैसे प्रभुपाद ने खंडन किया और जैसे उन्होंने जो है मतलब परास्त किए ऐसे सब निर्विशेषवादियों को, तो आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो अभी दुनिया देखी नहीं है, भक्तों के संग में रहते हो, हाँ, तो उसी में मतलब अपना मस्त रहते हो लेकिन मायावादियों का, इसलिए प्रभुपाद जी जो है मतलब जितने भी तात्पर्य हैं उन सब में खंडन कर रहे हैं, है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि प्रभुपाद कितना खंडन कर रहे हैं इन सब तर्कों का, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये समन्वय शिला भक्ति सिद्धांत सृष्टि ऐत्री उपनिषद एक 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 से उदाहरण देते हैं। आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत न अन्य किंचन ईषत सईक्षत लोकान्नु सृजा इति। ये इसका अर्थ तो नहीं दिया है प्रभुपाद ने, लेकिन ऐत्री उपनिषद का ये मंत्र है। इसका मतलब क्या है? आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आसीत नान्य किंचन ईषत सईक्षत लोकान्नु सृजा इति, मतलब लोगों को उन्होंने उत्पन्न किया आत्मा ने। अब यहाँ पर आत्मा का मतलब भगवान है, कृष्ण है, तो वही मतलब सबसे पहले थे, उन्होंने लोगों को उत्पन्न किया। स इच्छत है ना, स इच्छत, इच्छत माने इच्छा की, लोकानु सजाए थी कि सबकी सृष्टि करूँ, लोगों की सृष्टि करूँ, लोगों की सृष्टि करूँ, है ना। तो ये पुष्ट होता है उपनिषद में से आगे। इसी प्रकार शीतस्पर उपनिषद 4:9 में कहा गया है, छंदांसि यज्ञ कृतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति यस्मान् मायि सृजते विश्वमेतं तस्मिन् चान्यो माया सन्निरुद्धः। तो इसका भी अर्थ दिया नहीं है, इसका भी मतलब यही है, छंदांसि यज्ञ कृतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति, जितना वेद बताते हैं, मंत्र हैं, यज्ञ हैं और व्रत हैं, यस्मान माई सृजते विश्व मेला, तो जो माया के स्वामी हैं, तो ये विश्व जो है उनसे उत्पन्न होता है, तस्मिन् चान्यो माया समृद्ध, और उनकी माया के द्वारा ये समृद्ध हो जाता है, यानी उनमें समा जाता है, भगवान के अंदर समा जाता है। तो ये पुष्ट कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर 33:1 में भी, यतो वायमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रति अभिसंविशन्ति तत् विज्ञाजस्व तत् ब्रह्म। इसका अर्थ क्या है? ये तो वायमानि भूतानि जायन्ते, जिनके द्वारा ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये न जातानि जीवन्ति, और जिनके द्वारा उत्पन्न हुए जीवित रहते हैं, यानी पालित होते हैं। और फिर यत् प्रति अभिसंविशन्ति, जिनके अंदर सब प्रवेश पाते हैं, तद विजिज्ञासस्व मतलब उनकी जिज्ञासा करो, तद ब्रह्म वो ब्रह्म, तद विजिज्ञासस्व मतलब उनकी जिज्ञासा करो, और विजिज्ञासा करो कि मतलब विशेष रूप से जिज्ञासा करो, तद ब्रह्म, तद ब्रह्म वो ब्रह्म उनकी जिज्ञासा करो, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब वारुणी भृगु ने परम सत्य के विषय में अपने पिता वरुण से प्रश्न किया। वारुणी भृगु का मतलब क्या है कि भृगु एक दूसरे हुए हैं जो वरुण देवता के पुत्र हैं, इसलिए वारुणी कहा जाता है। वारुण इसमें ये की बड़ी मात्रा लिखी, लेकिन बड़ी मात्रा नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी में जो प्रभुपाद ने लिखा है वो छोटी मात्रा है। वारुणी, वारुणी का मतलब है वरुण के पुत्र, जैसे दशरथ के पुत्र हैं तो दासरथी बोलते हैं, था में छोटे की मात्रा दासरथी, दा में बड़ा की मात्रा कर दिया दशरथ से दासरथी, तो दासरथी का मतलब दशरथ के पुत्र, है ना। उसी प्रकार से वरुण के पुत्र हैं वारुणी, अड़ा में छोटे की मात्रा वारुणी, और वा में आ की मात्रा हो गई वारुणी भृगु। वारुणी भृगु माने एक दूसरे भृगु हैं जो वरुण देवता के पुत्र हुए, है ना। तो एक तो भृगु मुनि है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की त्वचा से उत्पन्न हुए, तो वो अलग है, लेकिन ये वरुण के पुत्र हैं भृगु। तो इन्होंने जो है अपने पिता वरुण से प्रश्न किया, तो वरुण ने उत्तर दिया था इस मंत्र में। अच्छा, ये तैतृय उपनिषद का जो मंत्र है वो प्रभुपाद कहते हैं वरुण देवता ने अपने पुत्र भृगु को बताया। इस मंत्र में यथा शब्द जो परम सत्य का सूचक है और जिनसे ये विश्व उत्पन्न हुआ है अपादान कारक में, अपादान मतलब उत्पन्न हुआ है ना, यथा यथा माने जिससे, यतो वा इमानी यतो या यतः इमानी भूतानि जायन्ते, है ना। तो ये उत्पन्न हुआ, फिर जिस ब्रह्म द्वारा इस विश्व का पालन होता है वो करण कारक ये न है, हाँ ये न जातानि जीवन्ति, ये जिनके द्वारा जीवित रहते हैं पालन करते हैं जी, ये जिनके द्वारा पालन होता है, और वो ब्रह्म जिसमें संपूर्ण सृष्टि विलीन होती है वो अधिकरण कारक यत या यस्मिन है, यत यत प्रति अभी संविशन्ति, यत जिसमें या यस्मिन, यस्मिन भी आया है, यस्मिन माये सिद्धते यत यस्मिन, आगे श्रीमद् भागवतम 1:5:20 में कहा गया है, इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा। हाँ, तो ये भागवत का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं प्रभुपाद। क्या है? यतो जगत स्थान निरोध संभवा, जगत का स्थान और निरोध और संभव होता है। स्थान का मतलब पालन और निरोध का मतलब, निरोध का मतलब प्रलय, और संभवा, संभव का मतलब सृष्टि उत्पत्ति। तो जिनके द्वारा जगत का पालन होता है और प्रलय होता है और सृष्टि होती है ना। आगे संपूर्ण जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट रूप में समाहित है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, उनकी शक्ति पर स्थित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं के व्यक्तित्व में फिर से समा जाती है। तो ये जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु तर्क दे रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु तर्क दे रहे हैं। तो ऐसे कई तर्क हैं कि भगवान का जो है अपना एक रूप है, अपना एक व्यक्तित्व है, वे जो है सज्जीवों के पिता हैं या स्वामी हैं, भोक्ता हैं, नियंता हैं। तो ये जो है निष्कर्ष चैतन्य महाप्रभु इन तीन बातों से निकालते हैं। लेकिन मायावादी इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते कि भगवान सृष्टि पैदा करते हैं। वो क्या कहते हैं? ये सृष्टि पैदा नहीं होती। मायावादी, मायावादियों को जो है ये बात स्वीकार नहीं है। तो शास्त्र का ही तो खंडन कर रहे हैं वो, अगर वो कहते हैं कि सृष्टि पैदा नहीं होती। उनका क्या कहना है? ये सृष्टि पैदा नहीं होती है। ये सृष्टि क्या होती है? एक मिथ्या है जो एक स्वप्न की तरह मतलब दिखाई पड़ रही है, लेकिन सचमुच नहीं, सच सच नहीं। उनका ये कहना है। तो सृष्टि पालन संघार वो मानते नहीं, सृष्टि पालन संघार नहीं मानते। अगर मानेंगे कि सचमुच सृष्टि पालन संहार होता है ना, तो उनका जो सिद्धांत है फिर तो वो उसका कोई आधार नहीं रहेगा, उनके सिद्धांत का खंडन हो जाएगा। तो वो क्या मानते हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जगत में, वैरायटीज जितना विविधता दिखाई दे रही है, वो है नहीं, दिखाई दे रही है। और जब आप जो है अपनी शुद्ध चेतना में आ जाएंगे, जागृत अवस्था में आ जाएंगे, तो आपको जो है कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, एक ब्रह्म दिखाई पड़ेगा, एक ब्रह्म। तो शब्दों का जाल इस प्रकार से वो बनाते हैं। लोग कहते हैं हाँ बहुत ऊंचा सिद्धांत है। लेकिन शिवजी पार्वती से कहते हैं पद्म पुराण में, मायावादम असच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बोधमुच्यते मय वेदना देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। कि ये मायावाद जो असत सिद्धांत है, ये प्रच्छन्नम बोधमुच्यते, ये बौद्ध सिद्धांत ही है जो कि वेदों के नाम से जो है वो मतलब वेदों का नाम दे दिया है, भाई वेदों के द्वारा ये सिद्धांत पुष्ट हो रहा है, वेदों के द्वारा पुष्ट किया है, बौद्धों का ही सिद्धांत। मय वेदा देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना, तो मैंने ही स्थापित किया है देवी, कलयुग में ब्राह्मण के रूप से मैंने ही स्थापित किया। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये शिव जी ने स्थापित किया, लेकिन वो स्वयं के असत सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है। ठीक है ना? आप लोगों की ओर से कुछ कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? मैं प्रश्न करूं? हाँ जी।
आपने एक बार फरीदाबाद में इसे मायावादी को बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब मायावादी लोग हमारा चिंतन नहीं करते, कभी कुछ होगा या भक्ति के होगा, वो तो ये समझते कि मतलब ये लोग दर्शन हो जाएंगे जब हमारे सिद्धांत पर आ जाएंगे, लेकिन हमको उनका खंडन करना चाहिए बार बार, उनका जब भी वो मौका मिले उनका खंडन करना चाहिए, क्योंकि उनका सिद्धांत
सबको सुनाई पड़ा नहीं, सुनाई पड़ा। अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ। इनका कहना है कि मैंने फरीदाबाद में ये बात बताई थी कि जो मायावादी लोग हैं वो हमारा खंडन नहीं करते, वो हमारे हमारे जो है जो भक्ति के कार्यक्रम हैं उनका बड़ा अनुमोदन करते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, हैं ये हरे कृष्ण का कीर्तन करते हो, जो कुछ भी करते हो भक्ति के कार्यक्रम वो अच्छा करते हो, और जब आप शुद्ध हो जाओगे तो फिर आप भगवान बन जाओगे, मतलब आप जो है निम्न नीची कक्षा में है, करते करते रहो करते रहो करते रहो, फिर भक्ति करते रहो, और भक्ति करते करते एक दिन क्या होगा, भक्ति भी समाप्त हो जाएगी, आप भी समाप्त हो जाएंगे, भगवान भी समाप्त हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा तो उनका जो है मतलब एक तरह से अनुमोदन करते हैं कि अच्छा कर रहे हैं आप, हमें इनका खंडन करना पड़ता है, आप समझे ना, हमें खंडन करना पड़ता है, और इस भावना से अगर कोई भक्ति करते है तो भक्ति शुरू ही नहीं होती, इस भावना से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है कि मैं अभी भगवान की भक्ति कर रहा हूं अंत में तो मैं ही भगवान बन जाऊंगा और भक्ति भी नहीं रहेगी, तो ये भक्ति शुरू से ही मतलब शुरू ही नहीं हुई है, भक्ति शुरू ही नहीं हुई है, आप समझे ना, तो इसलिए कहा मायावादी भाष सुन ले हो सर्वनाश, अगर मायावादी भाष सुन लिया तो सर्वनाश हो जाए, सर्वनाश का मतलब है कि भक्ति फिर जड़ से ही खत्म हो गई, आप समझे, तो इसलिए हम इसको जो है मतलब बहुत जोर देते हैं और बहुत खंडन करते हैं, और जिन्होंने सुना तो फिर वो बड़ी मुश्किल से निकलता है दिमाग से, बड़ी मुश्किल से निकलता है, इसलिए हमेशा सुनना है, हमेशा सुनाना है, हमेशा सुनना, हमेशा सुनाना, और खूब जप करना है, नियमों का पालन करना है, जैसे कि अंदर से वो जो है मतलब पूरी सफाई हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि जीव के अंदर जो है भगवान के प्रति ईर्ष्या है ही है, तो जैसे ही इस सिद्धांत को सुनता है तो तुरंत पकड़ लेता है जीव, जो भौतिक संसार में जीव आया है भगवान के प्रति ईर्ष्या के कारण ही आया, और जब ये बात जो है कहीं से भी मतलब वो सुनता है तो तुरंत इस बात को पकड़ लेता है, ठीक है ना, तो इसे शुद्धिकरण के लिए जो है तो बहुत हमें प्रयास करना होता है, ठीक है, हाँ आपको
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, तो ये कन्फ्यूजन रहता है मायावादी ब्रह्मवादी निराकारवादी शून्यवादी निर्विशेषवादी, सब में भेद क्या क्या अलग अलग क्या डिफरेंसेस है,
जो मायावादी हैं और निर्विशेषवादी हैं उनमें कुछ अंतर भी है, मायावादी क्या होते हैं, मायावादी होते हैं कि जो भगवान के रूप को माया माने, तो ये तो डायरेक्ट भगवान का जो है अपराध है कि भगवान के रूप में उन्होंने मतलब माया मान लिया कि ये माया ही है, आप समझे ना, तो चैतन्य महापुरुष ने मायावादी कृष्ण अपराधी, और जो निर्विशेषवादी हैं, निर्विशेषवादी जो है अपराधी नहीं होते, कृष्ण के अपराधी नहीं होते, लेकिन वे जो है भगवान के निर्विशेष पक्ष को मतलब पसंद करते हैं कि भाई हम भगवान के निर्विशेष ज्योति में हम मिल जाए या कुछ इस तरह से, वो उसको चुनाव करते हैं, तो निर्विशेषवादी, तो निर्विशेषवादी तो भक्त बन जाते हैं, निर्विशेषवादी जैसे सुखदेव गोस्वामी ने, हरि बोल, समझे, तो सुखदेव गोस्वामी निर्विशेषवादी थे, मायावादी नहीं थे, है ना, उनको ब्रह्मराज भी कहा जाता है कि गर्भ के अंदर जब वो थे तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही उनकी रक्षा हुई और वो गर्भ के अंदर रहना चाहते थे, अब गर्भ के अंदर तो बच्चा बहुत कष्ट पाता है, गर्भ के अंदर कहाँ बच्चा रहना चाहता, लेकिन वो 12 साल तक माता के गर्भ में रहे, तो ब्रह्मराज उनको कहा जाता है, ब्रह्मराज के अंदर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं जो है ब्रह्म हूँ, तो वो निर्विशेषवादी है, निर्विशेष ब्रह्म को जो है अपना उस रूप मान रहे हैं, उसमें मिलना चाहते हैं, लेकिन भगवान के तत्व का उनको पता नहीं है, जो भी हो उन्होंने जो है मतलब इतना उनको ज्ञान हुआ तो निर्विशेषवादी कहलाते हैं, तो निर्विशेषवादी तो भक्त बन जाते हैं, कि सुखदेव गोस्वामी उस निर्विशेष ब्रह्म के आनंद में वो डूबे रहते थे, जैसे पैदा हुए जन्म लिया तो घर छोड़ करके चले गए वन में, और ना कोई बात सुनते हैं और ना कुछ देखना चाहते हैं ना कुछ बोलना चाहते हैं, बिल्कुल इस तरह से ध्यान में लगे रहते हैं, लेकिन वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को समझाया, शिष्य बोले कि हम लोग जंगल में जाते हैं तो हमें जो है हिंसक जंतुओं से डर लगता है। तो व्यास जी ने कहा कि देखो एक मंत्र हम तुमको बताते हैं, इस मंत्र को जोर जोर से बोला करो। तो हिंसक जंतुओं से डर दूर होने के लिए तो मतलब और भी कई उपाय थे, लेकिन व्यास जी का जो है असली उद्देश्य यह था कि सुखदेव गोस्वामी को जो है अपने तरफ आकर्षित करना, खींचना। तो उन्होंने वो भागवतम का एक श्लोक सिखाया उनको, बरहा पेडम नटवर बपु कर्ण योग करने का आरम्भ, मतलब भगवान का वो रूप जिसमें जीव वृंदावन में वो प्रवेश करते हैं, मोर पंख का मुकुट धारण किए हैं, कर्ण योग करने का आरम्भ, विप्रद वासा कनक कपि संभे जी अंधीम जमानाम, इस तरह से जो श्लोक है। तो वे जोर जोर से वो पढ़ते हुए इससे जो है जंगल में जाते हैं। व्यास जी ने यही सोचा था कि मेरा पुत्र अगर सुनेगा तो वो जो है इसका आस्वादन कर पाएगा, क्योंकि वो शुद्ध चेतना है उसे, है ना, तो उसको मिला नहीं अभी इसका रस, इसलिए निर्विशेष ब्रह्म का रस उसको जो है वो ले रहा है, क्योंकि उसको कृष्ण के रूप का रस उसको नहीं मिला अभी। और हुआ भी यही कि जैसे निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं और ये शब्द कानों में पड़े, जैसे शब्द कानों में पड़े तो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान जो है वो निरस हो गया, है ना, और कृष्ण का जो रूप है वो आ गया, अब वो जो है भागने लगे। और व्यास जी ने कहा था कि हमारा पुत्र अगर तुम्हारे पास आए तो तुम जो है उससे बात नहीं करना, हमारे पास आ जाना, तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी मेरे पास आ जाएंगे। तो शिष्यों को सिखा दिया था। तो जब सुखदेव गोस्वामी जहाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है इस श्लोक की, तो जब वो भागे तो शिष्य भी भागा और व्यास जी के पास आ गए, तो सुखदेव गोस्वामी भी आ गए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पिताजी बोल ये श्लोक सिखा दीजिए, ये श्लोक सिखा दीजिए। तो पिताजी बोले बेटा बैठो, 18,000 श्लोक हैं। तब उन्होंने विधिवत श्रीमद् भागवत अध्ययन किया। तो निर्विशेषवादी जो है ये भक्त बन जाते हैं। चार कुमार भी निर्विशेषवादी थे, निर्विशेष ब्रह्म में वो जो है मतलब आनंद लेते थे, और जो है ब्रह्म ज्योति में भ्रमण करते करते वैकुंठ में वो पहुंच गए। अब उनकी जिज्ञासा है कि वैकुंठ में मतलब कौन रूप है, कैसा रूप है, जो कि मतलब उनकी देखने की इच्छा थी, है तो फिर भगवान का रूप का दर्शन किया, भगवान के रूप का दर्शन किया, और भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध नासिका में गई, तो फिर उन्होंने अब जो है निर्विशेष ब्रह्म का जो है धारणा बिल्कुल छोड़ दी। और फिर यही प्रार्थना की भगवान से कि आप हमको चाहे नरक में आप भेज दीजिए, लेकिन आपके चरणों की जो चरणों में चली तुलसी की सुगंध हमको मिलती रहे, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी जो है कानों के द्वारा सुन करके भगवान के रूप का वर्णन वो जो है आकर्षित हो गए भगवान की भक्ति में। और चार कुमार हैं वो भगवान के चरणों में चढ़ी तुलसी की सुगंध पा करके भगवान की प्रति आकर्षित हो गए। तो इस तरह से निर्विशेषवादी भक्त बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मायावादी हैं वो भक्त नहीं बनते, क्योंकि वो जो है कृष्ण के अपराधी होते हैं, ठीक है ना। और शून्यवादी जो है ये बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में क्या है कि ईश्वर की जो है ना उसमें चर्चा होती नहीं, ईश्वर है या नहीं है ईश्वर इस विषय में तो कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं जो है मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद मतलब समाप्त हो जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। बौद्ध धर्म में जो शून्यवादी सिद्धांत है वो ये होता है कि शरीर छोड़ने के बाद तो कोई जीवन है ही नहीं, अगला जीवन है ही नहीं, आप समझे, उसको शून्यवाद कहते हैं, अगला जीवन है ही नहीं। जब अगला जीवन है ही नहीं, अब ईश्वर है या ईश्वर नहीं है इस चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत, आप समझ रहे हैं। अभी मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं, तो शून्यवादी है ना। अब ये जो है कहा गया है कि प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, जो मायावाद है ये शून्यवाद का ही एक दूसरा रूप है, जो कि वेदों के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। शंकराचार्य जो है बौद्ध धर्म को निरस्त करने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो है वेदों की प्रामाणिकता को ही मतलब खंडन कर दिया, वेद प्रामाणिक नहीं है वेदों की। तो शंकराचार्य ने जो है मतलब क्या किया था कि वेदों की प्रामाणिकता स्थापित, तो बौद्धों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया इस बात पर कि जो तुम्हारा सिद्धांत है वही वेदों का भी सिद्धांत है, तो उसमें तुम वेदों को क्यों नहीं मानते हो। शंकराचार्य जो है इस आधार पर बौद्धों बौद्ध धर्म को उन्होंने जो है निरस्त किया। जितने भी बौद्ध थे उनसे मतलब वो शास्त्रार्थ करते थे और ये कहते थे अगर शास्त्र में मैं हार जाऊं तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, अगर आप हार जाए तो आप मेरे शिष्य बन जाना। तो ये जो है उनकी शर्त होती थी। इस तरह से बौद्धों को जो है वो परास्त करते थे। तो बौद्ध सिद्धांत जो शून्यवाद है उसको ही वो जो है वेदों के माध्यम से सिद्ध करते थे। वो कहते यही तो वेदों में भी तो यही है ना, फिर वेदों का खंडन क्यों करते हो। इस तरह से उन्होंने जो है इस सिद्धांत की स्थापना की, ठीक है ना। अब क्या है ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद तो ब्रह्मवाद तो जो है मतलब वैष्णवों का भी है, ये शास्त्रों का भी है। यतक्षरम वेद विदो वदंती विशंत रागा यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे, है ना। तो ब्रह्म जो है ना ये तो शास्त्रों में लिखा ही है कि ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ सब कुछ, है ना। तो ब्रह्मवादी तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई वो हैं और हम नहीं हैं, हम भी हैं ब्रह्मवादी वो भी ब्रह्मवादी, लेकिन बस अंतर केवल यही है कि वो निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं और हम ब्रह्म को सविशेष मानते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो है मतलब सविशेष ब्रह्मवाद है, उनका निर्विशेष ब्रह्मवाद है, ठीक है। हाँ जी इनको हैंड माइक दीजिए, इसके बाद आप पहले इनको दीजिए फिर इनको दीजिए। अच्छा एक बार उसके बाद।
हरे कृष्ण भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई जैसे आपने सुखदेव गोस्वामी और इनका चारों कुमारों का उदाहरण दिया, तो मेरा प्रश्न ये है कि इनके पिता तो भक्त नहीं है, चाहे ब्रह्मा जी हो या व्यास देव जी हो, तो पिता कैसे होते हुए संतान ऐसी निर्विशेष बात
की। अच्छा प्रश्न है कि पिता तो व्यास जी हैं मतलब वैष्णव हैं, उनका पुत्र जो है कैसे निकला ऐसा। तो इसका मतलब यही है कि वो सुखदेव गोस्वामी पहले से ही ये प्रबुद्ध हैं, मतलब एक ऐसी आत्मा है जो कि बहुत मतलब उन्नत जीव है। तो उन्होंने व्यास जी से कोई शिक्षा प्राप्त की ही नहीं और वो जन्म ही नहीं लेना चाहते थे। व्यास जी बोले बेटा जन्म लो, बोले नहीं जन्म नहीं लूंगा, 12 साल से माता के घर में है, जन्म नहीं लूंगा। क्यों जन्म नहीं लोगे? मैं जन्म लूंगा तो ये सब जो है मेरे ऊपर सब जो है ये संबंध जो बनेंगे जगत के, तो ये जो है मतलब बंधन हो जाएगा मेरे लिए। पिता है माता है ये है वो है, जगत के संबंध मैं इन संबंधों में नहीं बंधना चाहता। तो व्यास जी ने कहा बेटा ठीक है तुम जन्म लो, अपना मुंह दिखाओ और फिर तुम्हारी जो इच्छा हो करो, तो मैं संबंध नहीं मानना ना मानू। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा ठीक है। तो जन्म जैसे लिया तो पिता का भी मुंह नहीं देखा और नाल भी नहीं कटवाई और चल पड़े घर छोड़ कर ही चले गए। पिता की ओर भी नहीं देख रहे, मुड़ करके भी नहीं देखा, चले गए। तो मतलब ये स्थिति, तो फिर क्या वो पिता का संबंध ही नहीं मानना चाहते? ये बात है। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन व्यास जी मानते हैं कि श्रीमद् भागवत का सबसे पहला ग्राहक यही है, इतना ये जानता नहीं है, ये इतना शुद्ध है, ये जब पकड़ेगा तो फिर ऐसा पकड़ेगा कि मतलब छोड़ेगा नहीं इसको, बहुत शुद्ध है, शुद्ध जीव है ना। तो व्यास जी ने फिर श्रीमद् भागवत प्रदान किया। इसी पर चार कुमार ये भी बड़े मतलब विरक्त हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो, है ना, तो उन्होंने सृष्टि के लिए मना कर दिया। तो वे भी जो है मतलब बंधन में नहीं पड़ना चाहते किसी प्रकार के पिता के बंधन में। तो निर्विशेषवादी, तो इस प्रकार से निर्विशेषवादी इन आगे चल करके वैकुंठ में गए और भगवान के चरणों की चढ़ी तुलसी को उन्होंने सूंघा, तो उनको जो है फिर इस बात का जो है पता चला, है ना। तो इस तरह से ये निर्विशेषवादी जो है किसी न किसी कारण से भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि तो शुद्धिकरण तो उनका मतलब हुआ है, भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त होते हैं और सतोगुण की अवस्था में आते हैं, तो फिर वो जो है मतलब संभावना हो जाती है उनकी, ठीक है।
इसका मतलब है कि पूर्व जन्म या पूर्व संस्कारों के कारण जो है वो निर्विशेष की तरफ आकर्षित है।
हाँ जो भी कहें, जो भी गए, लेकिन मतलब यह है कि वो अपराधी नहीं होते हैं, तो उनको जो है अब भगवान का जो सविशेष पक्ष है, क्योंकि तो निर्विशेष भगवान के दोनों पक्ष हैं, निराकार पक्ष भी है साकार पक्ष भी है, जो भगवान से ब्रह्म ज्योति में निकल रही वो निराकार है निर्विशेष है, तो कोई उस ज्ञान को अगर वो प्राप्त करता है, किसी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करता है तो उन्नति तो कर ही रहा है, उन्नति तो कर ही रहा है ना। ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीन जो है पक्ष हैं भगवान के, तो ब्रह्म ज्ञान में वो निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान में आगे बढ़ा है ना, लेकिन वो आगे मतलब उसको और जानकारी जब मिलती है कि भगवान का ऐसा रूप है और ये रूप है भौतिक नहीं है, तो फिर वो आकर्षित हो जाता है। ठीक है, आपका प्रश्न आपने हाथ उठाया था।
हरे कृष्ण जी, सर्वखल्व इदम ब्रह्म जो है ये मतलब इसका मतलब क्या है, और ये भी क्या मायावादी सिद्धांत है?
नहीं, ये वेद मंत्र है, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म है, ये वेद मंत्र है ना, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो लोग जब करते हैं तो वो गलत व्याख्या करते हैं। जब हम कहते हैं सर्वम खल्व इदम ब्रह्म है कि सब कुछ ये ब्रह्म है, तो इसका मतलब ये है कि ये हर वस्तु जो है मतलब क्या है, चेतन है, हर वस्तु भगवान की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, चेतन है, लेकिन इसमें जो है फिर वेराइटीज भी हैं है ना। जैसे कहा गया कि ब्रह्म जी की आशा करो, किस ब्रह्म की जी की आशा करो, जिसके द्वारा जगत की सृष्टि पालन और संहार होता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी सही है, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मेरे द्वारा तो जगत की सृष्टि पालन संहार नहीं होता, आप समझे, तो ब्रह्म तो मैं भी हूँ, लेकिन किस ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, जिसके द्वारा है ना, तो उनको कभी परम ब्रह्म भी कहा जाता है, परम ब्रह्म है, परम धाम है, कभी ब्रह्म भी कहा जाता है, तो भगवान को जो है ब्रह्म भी कहा जाता है, परम ब्रह्म भी कहा जाता है, लेकिन जीव को परम ब्रह्म नहीं कहा जाता, ठीक ना। तो इस तरह से मतलब ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म गलत नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है सही है, या ब्रह्म की शक्ति है तो ब्रह्म से अलग नहीं है, इस तरह से कहा जाता है, लेकिन हमें उसको समझना पड़ेगा, उसकी विविधता को समझना पड़ेगा, शक्ति है शक्तिमान, उसमें भी भेद है, तो इस तरह से अचिंत भेदा भेद तत्व की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की। अच्छा माता जी ने, हाँ बोलिए। मायावाद, हाँ इनका अच्छा प्रश्न है कि शिव जी ने, हम भगवान शिव ना कहें तो अच्छा है, क्योंकि कृष्ण को भी भगवान कहते हैं, शिव जी को भी, तो फिर वो क्या है कि वो एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे फिर वो भ्रम पैदा होता है ना, इसलिए हम भगवान शिव ना कहें कि हम शिव जी कहें, ब्रह्मा जी कहें, वो ज़्यादा अच्छा है, हालांकि शास्त्रों में लिखा है हम भगवान सब शिव जी के लिए, लेकिन हम अपने मतलब अंतर समझने के लिए हम भगवान शब्द का प्रयोग ना करें ज़्यादा अच्छा, मेरा सुझाव यही है। तो शिव जी ने जो है मायावाद की स्थापना क्यों की, वो तो परम वैष्णव शिव जी, तो इसमें भी भगवान का आदेश था, शिव जी को भगवान ने आदेश दिया, कलयुग में पाखंड फैलता है और ये कलयुग में लोगों को अवसर मिलता है पाखंड फैलाने, चार युगों में से कलयुग सबसे कम अवधि वाला है, 4,32,000 साल, ठीक है, द्वापर तो दूर ना है, और त्रेता कलयुग से 3 गुना है, और सत्युग कलयुग से 4 गुना है ना, तो इन 3 युगों में जो है जिस पाखंड को अवसर नहीं मिलता फैलने का, वो पाखंड जो है कलयुग में फैलता है, तो कलयुग में जो है मतलब ये दोष हैं, बहुत दोष कलयुग में, तो कुछ लोगों की इच्छा होती है पाखंड फैलाने की, तो पाखंड फैलता है, और कुछ लोग पाखंड को जो है अपनाना चाहते हैं तो उनको भी अवसर दिया जाता है पाखंड को अपनाने का, ठीक है ना, लेकिन बस आपका काम है कि आप अपने को धोखा देना चाहते हैं तो भगवान धोखेबाज से मिला देंगे, और आप अगर सच्चा रास्ता पाना चाहते हैं तो भगवान आपको सच्चे साधु से मिला देंगे, अभी आपकी इच्छा है कि आप अपने को जो है धोखा देना चाहते हैं या आप सही रास्ते में चलना चाहेंगे, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। ये इस्कॉन आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन जो है ये उन जीवों के लिए है जो कि मतलब सत्य को जानना चाहते हैं, परम सत्य को जानना चाहते हैं, यथार्थ सत्य को जानना चाहते हैं, उनके लिए है। लेकिन जो अपने को धोखा देना चाहते हैं तो उनको जो है ऐसे ही लोग मिलेंगे जो शरीर की बातें बताएंगे, ठीक है। हाँ आप तो बहुत लोग हैं, आप क्षमा करें। धन्यवाद। कृंदरा श्रीमद भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधिका रमण भगवान की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। गौनताई की जय हो।